يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الملک کی آیت نمبر 8 ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. 7 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا. سیکنڈ پارٹ سورہ ملک کا چل رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر جہنم میں جانے والے لوگوں کی گرافک پکچر دی ہے. آیت نمبر 8، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم جو ہے وہ آلموسٹ ایکسپلوڈ ہو جائے گی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتہا، جب بھی کوئی گروہ، جب بھی کوئی فوج، جب بھی کوئی ایک میسو گروپ جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جو جہنم کا کیپر گارڈ ہوگا یا جو گارجین ہوگا، وہ ان سے سوال کرے گا، الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہاں پر ایک اور تصویر آپ کو، ایک بہت گرافک تصویر، ویوڈ ڈسکرپشن جو ہے وہ جہنم کا مل رہا ہے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے گی، یعنی آگ کی انٹینسٹی کو مینشن کیا گیا ہے. آگ کی انٹینسٹی کیا ہوگی؟ کہ آگ اتنی بڑھے گی، اتنی زیادہ بلیزنگ فائر ہوگی، کہ ایسے لگے گا کہ جہنم ابھی کسی وقت بھی ایکسپلوڈ کر جائے گی. آگ اتنی پھیلے گی کہ لگے گا کہ جہنم اس کو کنٹین نہیں کر سکے گی، لیکن جہنم آگ کو کنٹین کرے گی، اس لیے کہ اس کنٹینر کے اندر اس کی ہیٹ کو مینٹین کرنا ہوگا. تکاد تمیز من الغیظ، یہ عرب بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ یہ محاورہ استعمال کیا کرتے تھے اپنی کلاسیکل لینگویج میں. اینشینٹ عربس اس جملے کو ایز اے محاورہ، ایز اے فگیوریٹو سپیچ استعمال کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے یکاد و یتمیز من الغیظ، کسی انسان کو جب یہ کہنا ہو کہ اتنا غصہ اس کو آ رہا ہے، ہی ول آلموسٹ ایکسپلوڈ، پھٹ جائے گا. جیسے اردو میں نہیں ہم کہتے کسی انسان کا آگ بگولا ہو جانا، تو آگ بگولا ہو جانا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے. آپ کہتی ہیں فلاں مجھے دیکھ کر جل گئیں. اب وہ جل گئیں کا مطلب خدا نخواستہ کوئی تھرڈ ڈگری، سیکنڈ ڈگری برن نہیں ہو گیا ان کو، ایک محاورہ ہے کہ بہت سخت ان کو تکلیف ہوئی. تو جب عرب یہ جملہ استعمال کرتے تھے، مطلب ہوتا تھا کسی انسان کو جب اتنا غصہ آتا ہے کہ ہی از اباؤٹ ٹو ایکسپلوڈ، لگے گا بس ابھی پھٹ جائیں گے، بالکل یہی والا جملہ اللہ تعالیٰ نے جو عرب استعمال کرتے تھے جہنم کے لیے استعمال کیا. ظاہر ہے عرب نے جب یہ سنا تو ان کو اندازہ ہو گیا، جیسے انسانوں کے لیے وہ کہتے تھے کہ اتنا غصہ آ رہا ہے کہ آؤٹ آف ریج پھٹ جائے گا، ایکسپلوڈ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ سچ مچ کوئی خدا نخواستہ اس کی باڈی جو ہے وہ مختلف فریکشنز میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. کہنے کا مطلب ہوتا تھا غصے کا اظہار کرے گا. تو جہنم کا یہ ڈسکرپشن اہل عرب فوراً سمجھ گئے تھے کہ وہ اتنی غصے والی جگہ ہے، وہ اتنی زیادہ بلیزنگ فائر کی جگہ ہے، وہ اتنی بڑھتی ہوئی رائزنگ فلیم کی جگہ ہے کہ لگے گا کہ جیسے پھٹ جائے گی، اتنی ہیٹ ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ہیٹ کو اس کے کنٹینر میں کنٹین کروائیں گے، بالکل جیسے ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح سے جہنم اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، اس میں سے جہنم اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خطرناک اور ڈینجرس مخلوق ہے. موت سے بھی زیادہ خطرناک جہنم ہے. جہنم کے لیے اگر آپ قرآن اور احادیث کا ایسنس اکٹھا کریں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر فیلنگز ہیں. جہنم کی جو آگ ہے اس میں فیلنگز ہوں گی. جہنم اپنے شکار کو دیکھ کر، اپنے پرے کو دیکھ کر سٹیئر کرے گی. قرآن کی آیت کا مفہوم آتا ہے کہ جہنمی کو جب دیکھے گی جہنم دور سے، تو اس کو دیکھ کر زفیرہ چنگھاڑے گی، جیسے کوئی وائلڈ بیسٹ جو ہے وہ چنگھاڑتا ہے، وہ اس وقت شاؤٹ کرتا ہے. تو جہنم کے اندر فیلنگز ہیں. جہنم اپنے دشمنوں کو پہچانے گی. جہنم روز محشر بولے گی، جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 30 میں، یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، کیا تم بھر گئی ہو؟ وتقول حل من مزید، اور جہنم بولے گی کیا اور بھی ہیں؟ تو جہنم اللہ کی مخلوق ہے. جہنم اللہ کی مخلوقات میں سب سے خطرناک مخلوق ہے. जहन्नुम की आग में फीलिंग्स हैं, जहन्नुम अपने दुश्मन को स्टेयर करेगी, जहन्नुम अपने अंदर आने वाले जहन्नमी को स्टेयर करेगी, देखेगी, और जहन्नमी गुफ्तगू करेगी रोज़े महशर के दिन। जब उससे पूछा जाएगा क्या तुम भर गई, तो वो कहेगी कि क्या और भी हैं। अगर कोई इंसान कहे कि ये कैसे मुमकिन है, सिर्फ उसको थोड़ा सा अपनी अक़ल को इस्तेमाल करके अल्लाह के कलाम के सामने बैठने की ज़रूरत है। अल्लाह के कलाम में आप सिर्फ और सिर्फ ये जहन्नुम और मखलूकात और दुनिया और जन्नत की हकीकत नहीं सुन रहे होते हैं, आपकी इंटेलेक्ट इसके साथ अटैच हो रही होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना वक्त नहीं लगाते थे सूरतों के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मुल्क की 30 आयतें पढ़ी और जो अरब और जो सहाबा थे उनको समझ आ गई कि अल्लाह के रसूल क्या बताना चाह रहे हैं। आप क्यों मेरी तरह एक एक आयत पर चार चार दिन और पाँच पाँच दिन नहीं लगाने पड़ते थे उनको, लेकिन ये कॉन्टेंट कुरान के अंदर मौजूद है जिसके ज़रिए आपसे इतनी लंबी बात की जा रही है। कुरान सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं देता, कुरान हर अपने रीडर की इंटेलेक्ट को अपने साथ इंटैक्ट करता है। शर्त सिर्फ ये है कि पढ़ने वाला, सुनने वाला, रीडर, ऑडियंस इसके सामने न्यूट्रल होकर बैठे और सुनने के लिए तैयार हो। तो अल्लाह की मखलूकात किस तरह से फीलिंग्स रखती हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल जैसे अल्लाह की तमाम मखलूकात तस्बीह करती हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी मखलूक कैसे तस्बीह करती है। इसी तरह से उलमा कहते हैं कि जहन्नुम का ये जिक्र सुन के कि जहन्नुम की आग में फीलिंग्स होंगी, हमारा ये ईमान है कि जैसे जहन्नुम अल्लाह से बात करेगी, हमारा ये ईमान है जैसे अल्लाह की मखलूकात तस्बीह करती हैं, इसी तरह से तमाम मखलूकात के अंदर फीलिंग्स भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, आपने फरमाया ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। अब ओहद पहाड़ की ये फीलिंग्स मोहब्बत वाली कैसी हैं और वो कैसे मोहब्बत करता है, ये आपके और मेरे लिए डिस्क्राइबेबल आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो हमारा ईमान है कि जब वो कह रहे हैं तो इसमें हक बात होगी। बिल्कुल जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कुरान से ये बात सुनी, अपने रसूल से ये बात सुनी और ट्रेडिशन से ये बात हम तक फिल्टर डाउन होते हुए आ रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। फिजिकल पावर आग की ये है कि आग सबको जला देती है, और जिस तरह की फायर उन्होंने बनाई थी कि वो कमरे के साइज़ की पूरी जो थी वो बॉनफायर थी, इतनी दूर से उनको कैटापोल में डाल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकना पड़ा था क्योंकि उसकी हीट बहुत दूर तक आ रही थी। बाज़ नरेशंस बताते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए जो आग तैयार की गई थी, अगर उसके ऊपर से कोई परिंदा उड़ता हुआ गुजरता था तो फ्रोस्ट होके उसके अंदर गिर जाता था, इतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी थी। उसी आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया, क्या हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? जिन रस्सियों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने बांधा था, हाथ पांव बांधे हुए थे ना, कैटापोल पे बांधा था। कैटापोल कैसा था? एक दरख्त के तने के साथ उन्होंने एक अपना कैनन बना के उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांध के जैसे बॉम्ब फेंकते थे कैटापोल पे, ऐसे उन्होंने फेंका था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव उन्होंने बांधे हुए थे। जब आग में फेंका तो आग की इंटेंसिटी जितनी भी थी, रस्सियाँ जल गईं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है, हमने आग से कहा, सूरह अंबिया में आता है आयत नंबर 69 में, कुल ना या ना रुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन जा। तो उस आग को अल्लाह ने मोहब्बत की फीलिंग्स दे दी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ने अपनी मखलूकात के अंदर फीलिंग्स रखी हैं, जहाँ अल्लाह ने आग में रेज रखा है, जहाँ अल्लाह ने आग में टेम्परेचर रखा है, जहाँ अल्लाह ने आग में हीट रखी है, अल्लाह जब चाहे अल्लाह इस आग की हीट, गुस्से, गैस और रेज को मोहब्बत के एलिमेंट में बदल दे। इसीलिए हम आयत पढ़ते हैं सूरह मरियम की आयत नंबर 71, जिसमें आता है कि हर इंसान विदाउट एक्सेप्शन, हर इंसान उसको आग के ऊपर से गुजारा जाएगा। उलमा के मुताबिक, बास मुफस्सिरून के मुताबिक, ये वक्त जिसको सूरह मरियम आयत नंबर 71 में मेंशन किया गया है, ये सिरात का वक्त होगा। सिरात जहन्नुम के ऊपर कायम किया जाएगा, जहन्नुम के ऊपर सेट किया जाएगा, और विदाउट एनी एक्सेप्शन हर इंसान इस जहन्नुम के ऊपर जो सिरात, जो ब्रिज कायम किया जाएगा, इसके ऊपर से गुजरेगा। सूरह मरियम की आयत नंबर 71 में आता है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बी का हतमन मकदिया, तुम में से हर एक को इसके ऊपर से गुजरना है और ये अल्लाह की डिवाइन डिक्री है। इट्स हतमी बात, इट्स अ डिक्लेयर्ड थिंग, इट हैज़ टू बी फुलफिल्ड, हर एक को गुजरना है। एक रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी आयत के बारे में सवाल किया। جب یہ آیت حضرت عائشہ نے پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ کیا ہر ایک اس آگ کے اوپر سے گزرے گا؟ آپ نے کہا ہاں. آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے آل آف اس, ہم سب گزریں گے. صرف فرق یہ ہوگا کہ وہ گزرنے والے جو اللہ سے محبت کرتے تھے دنیا کی زندگی میں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے, جب وہ اس صراط کے اوپر سے گزریں گے تو اللہ اس آگ کو ان کے لیے ایسے ہی کمفرٹیبل کر دے گا جیسے کہ اللہ نے اپنے حبیب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس صراط سے گزریں ہمارے لیے بھی اس آگ کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دیجیے گا, ویسا ہی کمفرٹیبل کر دیجیے گا جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو کمفرٹیبل کیا تھا. ہاں اس کی شرط ہے, کنڈیشنل ہے یہ بات, آگ کا ٹھنڈا ہونا صراط کے اوپر یا انکنڈیشنل ہے؟ کنڈیشنل ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہم جانتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر جمنا ہم جانتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا ہر طرح کی شرک سے اپنی زندگی کو پاک کر دینا ہم سمجھ سکتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے عشق میں اپنی دنیا کی ہر نعمت کو چھوڑ دینا ہم اچھی طرح سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے لیے آسان نہیں ہے. ہاں یہ دعائیں مانگتے ہیں ہم ضرور اس لیے کہ ہم کمزور انسان ہیں, دعا مانگنا ہمارا کام ہے, لیکن یاد رکھیں اللہ کو صرف ہماری دعا نہیں, اللہ کو صرف ہمارا دعویٰ نہیں, اللہ کو ہماری مینیفیسٹیشن عمل میں بھی چاہیے, اللہ کو ہماری محبت اور توحید عمل میں بھی چاہیے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ وقت آئے ہم اس وقت اس آگ کو اپنے لیے محبت کی فیلنگز کے ساتھ محسوس کریں, اور اللہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہر عمل کرتے ہوئے اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے ہر عمل سے اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کرنا ہے. ہمارا ہر عمل یا ہمیں جنت کے قریب کرتا ہے یا ہمیں جہنم کے قریب کرتا ہے, اور چوائسیز ہماری ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جہنم کا ایک ڈینجرس مخلوق ہونا مختلف اینگل سے واضح کرنا وہ آپ کو اس مقام پر مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آگ, یہ جہنم, یہ جہنم کی سختی, یہ جہنم کا غضب تیار کیا ہے للذینہ کفرو کے لیے. اور کل آپ کو بتا دیا تھا للذینہ کفرو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ریکگنائز کر لیا, جنہوں نے اللہ کو مانا اللہ کی بات کو نہیں مانا. کفر ہوتا وہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئے کہ حق کو پہچان جائے لیکن پھر حق کا انکار کرے. تو یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا یا اللہ کو پہچانا, اللہ کی بات نہیں مانی. یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جاننے کے باوجود گناہ کا لائف سٹائل نہیں چھوڑا. بعض اوقات زندگی میں کوئی ایک گناہ ہوتا ہے, وہ ایک گناہ انسان کو جہنم میں گرانے کا سبب بن سکتا ہے. مومن کو جب پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی میں ایک چیز گناہ ہے وہ اپنی زندگی سے اس کو اومٹ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. جس وقت احساس ہو جائے, چاہے قرآن کی کلاس میں بیٹھے بیٹھے احساس ہو کہ میری زندگی کا یہ عمل پرابلمیٹک ہے, اسی وقت اپنے عمل کو ٹھیک کر لیجیے. آخر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی تو مومنٹ آف کلیئرٹی ملا تھا نا, جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا ان کے, اور وہ جو ایکس تھا کلہاڑی جو تھی وہ بڑے والے بت کے کندھے پہ لا کے رکھ دی تھی, اور جب لوگوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں ابراہیم یہ کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے فراجعوا الی انفسہم انکم لظالمون. ایک لمحے کے لیے تو ان کو خیال آیا تھا فراجعوا الی انفسہم, دا مومنٹ آف کلیئرٹی ان کو ملا تھا کہ صحیح تو کہہ رہا ہے یہ نوجوان, جو لوگ جو بت اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے وہ ہماری پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں, جو بت بول نہیں سکتے وہ ہمیں کیسے جواب دے سکتے ہیں ہماری جواب دعاؤں کے اوپر. تو مومنٹ آف کلیئرٹی ملا تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی, لیکن پھر کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, اس مومنٹ آف کلیئرٹی پر انہوں نے اپنے عمل کو درست کیا یا بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے؟ بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے. ہمیں بھی کئی مرتبہ قرآن کی کلاسز میں کسی آڈیو کو سن کر, کسی ویڈیو کو سن کر, کسی کتاب کو پڑھ کر, کبھی قرآن کی تفسیر پڑھ کر, کبھی کسی دعا کو مانگتے ہوئے, کبھی کسی قیام میں کھڑے ہوئے, کبھی کسی قیام میں تراوی میں امام صاحب کی تلاوت کو سنتے ہوئے مومنٹ آف کلیئرٹی ملتا ہے. دل میں خیال آتا ہے اچھا اب میں نیک بنوں گی, دل میں خیال آتا ہے اچھا اب میں اپنا یہ گناہ چھوڑ دوں گی, دل چاہتا ہے نیک بننے کا, پر پھر کیا ہو جاتا ہے اگر وہ دل چاہنے کو عمل میں فوراً مینیفیسٹ نہ کیا جائے اور ڈیلینگ ٹیکٹس پہ زندگی گزاری جائے کہ اچھا کل کر لوں گی, پرسوں کر لوں گی, دو سال بعد کر لوں گی, دس سال بعد کر لوں گی, تو پھر وہ ہدایت آہستہ آہستہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے, بالکل جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ہاتھ سے یہ مومنٹ آف کلیئرٹی جو تھا یہ چھوٹ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سزا بتائی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حق پہچانا تھا لیکن پہچاننے کے بعد انکار کیا, اسی کو کفر کہتے ہیں. और यही क्लैरिटी यहाँ पर सूरह मुल्क में बताई गई है कि अल्लाह ताला हर जहन्नमी को जिसको जहन्नुम में डालेगा उसको ये मोमेंट ऑफ क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में मिला होगा। यह हमारे बिलीफ का हिस्सा है कि कोई ऐसा जहन्नमी नहीं होगा। दिस इज़ पार्ट ऑफ आर अकीदा। कुरान की मुख्तलिफ आयात, रसूलुल्लाह की मुख्तलिफ अहादीस इस चीज़ को वाज़े करती हैं कि कोई ऐसा जहन्नमी नहीं होगा जो उस वक्त जहन्नुम के बाहर खड़े होकर ये समझेगा अना मजलूमुन, मुझे तो खामखा जहन्नुम में डाल दिया, मैं तो बेकसूर हूँ। जहन्नुम में कोई ये नहीं समझेगा। जहन्नुम में हर इंसान को मालूम होगा कि उसको किस गुनाह की वजह से जहन्नुम में डाला जा रहा है, वो किस वजह से जहन्नुम डिज़र्व करता था। उसको अपने गुनाह, उसको अपनी गलतियाँ वाज़ तौर पर नज़र आ रही होंगी। तो कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन, जब एक मैसिव ग्रो को उसमें डाला जाएगा। आप फ़ौजुन का लफ्ज़ यहाँ पर देख रहे हैं, ताइफ़ा नहीं आया यहाँ पर, जमात नहीं आया यहाँ पर, ग्रोह नहीं आया। फ़ौज कहते हैं मैसिव ग्रुप को। कुल्लमा उल्किया, और उल्किया से कुछ याद आया कल वाली बात, ट्रैश की तरह जब फेंका जाएगा। जब भी किसी ग्रुप को, जब भी किसी मैसिव ग्रुप को ट्रैश की तरह आग में फेंका जाएगा, जहन्नुम में फेंका जाएगा, उसकी बात हो रही है। यानी नंबर एक, फ़ौज से मुफस्सिरून ये बात मेंशन करते हैं कि हर इंसान ये बात याद रखे कि अगर गुनाह करने में उसके साथी बहुत हैं, अगर ज़िंदगी की नाफरमानियों वाले लाइफस्टाइल में उसके फॉलोवर्स बहुत हैं, अगर ज़िंदगी में उसको अपना नंबर अपने साथ अल्लाह की नाफरमानी करते हुए बहुत सों का नज़र आता है, दैट वी आर इन अ मेजॉरिटी, आखिर अल्लाह इतने लोगों को जहन्नुम में डालेगा कैसे। अगर कोई इंसान ये समझता है कि मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी और इस चक्कर में वो उस कम माइनॉरिटी का हिस्सा नहीं बनता जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सहाबा के अमल पर चल रहे हैं, तो वो सब सुन लें, अल्लाह को नंबर बॉदर नहीं करता। अल्लाह हज़ारों क्या, लाखों क्या, अल्लाह बिलियन के बिलियन को जहन्नुम में डाल देगा। इसीलिए यहाँ पर आया है फौजन का लफ्ज़। मैसिव ग्रुप्स को जब डाला जाएगा, और ये मैसिव ग्रुप इंसानों का एक नहीं होगा, कुल्लमा जब भी डाला जाएगा, यानी एक के बाद एक मैसिव ग्रुप जहन्नुम में डाला जाएगा। तो अल्लाह को नंबर प्रेशराइज करने के लिए कभी कोई इंसान इस्तेमाल ना करे, वाज़े कर दिया गया। जब भी कोई ग्रुप डाला जाएगा, कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन। एक और एंगल जो मुफस्सिरून मेंशन करते हैं इस फ़ौजुन के अंदर, फ़ौजुन का एराब तनवीन का है। अब वैसे अक्सर लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मालूम है कि जब आप किसी लफ्ज़ के आखिर में दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर देखती हैं तो उसको तनवीन कहते हैं। तनवीन वाला इसम ज़्यादातर, नॉट एवरी टाइम, ज़्यादातर कॉमन नाउन होता है, इसम नकरा जिसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा है, चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप था, चाहे कितने फेमस लोग थे, चाहे तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग जितनी भी थी, अल्लाह की नज़र में यू आर अननोन, फौजुन, कॉमन नाउन। अल्लाह ने ये नहीं कहा जब भी किसी द ग्रुप को डाला जाएगा, अल फौज नहीं कहा, फौजुन, जब भी किसी भी ग्रुप को डाला जाएगा, इसका मतलब है अल्लाह की नज़र में नाफरमान लोग कोई वैल्यू नहीं रखते। दुनिया में फेम रखने वाले, दुनिया में इज्जत रखने वाले, दुनिया में मुकाम रखने वाले आखरत में अल्लाह की नज़र में अननोन होंगे। अल्लाह को उनके दुनिया की पोजीशन की कोई कदर नहीं है। तो यहाँ मेंशन क्या किया गया, वो लोग जो समझते हैं कि आज दुनिया में आप और मैं, या वो लोग जिनका ख़ास तौर पर पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हम दीन पर अमल नहीं कर सकते, हमारा एक स्टेटस को है, हम दीन पर अमल नहीं कर सकते इसलिए कि हमारी एक पोजीशन है, हम इस तरह से दीन को आज 1450 साल पुराने तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये ऑब्सोलीट है जिस सर्कल में हमारा उठना बैठना है। आज हमारे लिए दीन पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए कि हम एक डिवेलप्ड लाइफस्टाइल को गुजार रहे हैं। जिनका ये माइंडसेट है वो सब ये बात सुन लें। जिन्होंने शरीयत का इनकार किया है इस सोच के साथ कि अगर हमने शरीयत पर अमल किया तो ये हमारी दुनिया की तरक्की के रास्ते में रुकावट होगा, हम क्योंकि इस स्कूल में पढ़ते हैं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हम ये गेटअप अडॉप्ट नहीं कर सकते, हम क्योंकि इस ऑफिस में जॉब करते हैं तो हम ये तरीक़ाकार अपनी ड्रेसिंग का नहीं रख सकते, क्योंकि हम इस सोशल सर्कल में उठते बैठते हैं तो हमारे इतने ऑब्सोलीट बुरखे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है, अब हम हर पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे हमें किसी भी सेलिब्रेशन के लिए बुलाया जाता है हम नहीं इनकार कर सकते, हमारा बिजनेस सर्कल ऐसा है हमें मजबूरी में गज़ल नाइट्स में और म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में जाना पड़ता है। जो लोग भी अपने साथ किसी भी किस्म की मजबूरी का टैग, दुनियावी मजबूरी का टैग लगाते हैं और अल्लाह की नाफरमानी में किसी न किसी एसेंस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब ये बातें सुन लें कि जिन्होंने दुनिया की शोहरत के लिए, दुनिया के नाम के लिए दीन को साइडलाइन किया था, दीन को बैक बर्नर पर रखा था, क़यामत के दिन वो अननोन होंगे, कोई उनको नहीं जानेगा, किसी को उनकी परवाह नहीं होगी, कोई उनकी कदर और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, दुनिया के विनियर्स दुनिया में ही रह जाएंगे। क़यामत के दिन ऐसे तमाम नाफरमान अल्लाह के लिए और तमाम उस वक्त की उम्मत के लिए अननोन होंगे। और अगर थोड़ा सा भी इंसान तफक्कुर के साथ सूरह मुल्क को एक दूसरी आयत से इंटरकनेक्ट करे, जिस इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह वो बाबरकत हस्ती नहीं थी, जिस बाबरकत हस्ती के साथ इताअत को कॉन्स्टेंटली अटैच किया जाता, जिसकी ज़िंदगी तबारकल्लज़ी से नहीं जुड़ी, उसको बका कैसे मिल सकती है? जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह का नाम कनेक्टेड नहीं था, जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह की दी हुई शरीयत कनेक्टेड नहीं थी, उसको आखरत में स्टेबिलिटी कहाँ से मिल सकती है? तो जब आपको दुनिया, दुनिया की मशहूरी, दुनिया की शोहरत, दुनिया का माल, दुनिया की नामवरी, दुनिया का स्टेटस अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेकर जाए, तो बस ये एक जुमला पढ़ लिया करें, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजन, जब भी कोई उसके अंदर नाफरमान ग्रो डाला जाएगा, शायद फिर अमल के लिए 2% सही, 1% सही, 0.5% सही कदम तो उठेगा, आगे तो बढ़ेंगे। अल्लाह की नाफरमानी की जस्टिफिकेशन मोमिन नहीं देता कभी भी, इसलिए कि उसको अल्लाह की नाफरमानी करनी नहीं होती। अल्लाह के लिए ऐसे नाफरमानों की कोई वैल्यू नहीं है, उनका नाम मेंशन करना तो दूर की बात, अल्लाह ने उनको प्रॉपर नाउन बनाने की भी रिस्पेक्ट नहीं दी, अल फौज भी नहीं कहा, अल्लाह ने उनको कॉमन नाउन बना दिया, उनको इतना ही अल्लाह ताला ने मामूली कर दिया। और दुनिया में जो लोग अपने आप को अक्सर और बेशतर हाई पेडिस्टल पर समझते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी इनसिग्निफिकेंस वाजे कर दी। बाज़ोकात इंसान अपने आप को बहुत इलीट समझता है, खुद से इंसान खुद से अपने आप को एक मुकाम पर समझने लग जाता है, अल्लाह की नज़र में रोज़े महशर के दिन उसके इनसिग्निफिकेंस वाजे होना तो दूर की बात है। बहुत से ऐसे इंसान जो अपने आप को अपने तकब्बुर की वजह से दुनिया में कुछ समझते हैं, अल्लाह दुनिया में ही उनको उनकी हकीकत दिखा देता है। अगर आप ख़ास शान नज़ूल के हिसाब से मक्की दौर को देखें, अरब अपने आप को बड़ा लीडर और बड़े इलीट समझते थे, विद इन अरब्स अपने आप को बड़ा आला कस्टोडियन समझते थे काबा का, लेकिन उनके दोनों नेबर्स में पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर जो थे, उनकी नज़र में ये अरब कीड़े मकोड़े थे, इसलिए कि ना इनके पास कोई मिलिट्री पावर थी, ना इनके पास रिसोर्सेज थे, ना इनके पास जो था वो कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था इलाकों का और रहन सहन का। उसी वक्त, अभी तो अल्लाह के सामने जाकर खड़े भी नहीं हुए, उसी वक्त इनको ये हकीकत अगर याद आती और ये कुरान की ज़ुबान से समझते, तो इनको बताया गया है कि अल्लाह के सामने खड़े होना तो दूर की बात, अपने जैसे इंसानों के सामने भी बाज़ों का जब इंसान अपने आप को किसी के सामने हाई पेडिस्टल पर रख रहा होता है, किसी की नज़र में बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होता है, कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो अल्लाह ने वाजे किया है, जो जागना चाहता है उसको जगाने के लिए कुरान की एक आयत काफ़ी होती है, जो पलटना चाहता है उसको कुरान का एक जुमला पलटा लेता है, जो सीधे रास्ते पर आना चाहता है उसको सिराते मुस्तकीम अल्लाह ताला दिखाते ज़रूर हैं। तो यहाँ मेंशन किया गया, मुतकब्बिर ना बनो, मुतकब्बिर इंसान का अंजाम जहन्नुम है। और अल्लाह तमाम मुतकब्बिर इंसानों को, चाहे वो कितने ही बड़े नंबर में क्यों ना हो, जहन्नुम में डाल देगा, और फिर वो अननोन होंगे, कोई उनको नहीं पहचानेगा। तो अपने अंदर से सबसे पहले इसी मुकाम पर अगर किसी भी किस्म का किबर है, अगर कभी अपने आप को कुछ समझा है, अगर किसी भी किस्म की एरोगेंस है, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मुझे इबादुर रहमान में दाखिल फरमा। और इबादुर रहमान की सूरह फुरकान में पहली सिफत आती है, वो ये कि वो नरमी के साथ चलने वाले होते हैं, उनके अंदर किसी किस्म की अकड़ नहीं होती, वो अपने आप को कुछ समझते नहीं हैं, उनके लिए सबसे अहम अल्लाह की फरमा बरदारी होती है, वो अपने आप को ना कभी अपने कपड़ों से गेज करते हैं, ना सामने वाले को उसके कपड़ों से गेज करते हैं, ना वो सामने वाले को ये देख के सलाम करते हैं कि ये मेरे सलाम के काबिल है कि नहीं है। रमज़ान का महीना है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में जाते हैं, किसको सलाम करते हैं हम? जिसको हम जानते हैं, बराबर में दो बैठी हैं आपके राइट और लेफ्ट पर, उनको नहीं सलाम किया, दूर नज़र आ गई अपने मोहल्ले वाली या अपने क्लास की कोई फ्रेंड, वहाँ से वेव कर दिया उनको। और जो राइट और लेफ्ट बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है वो मुसलमान नहीं है? मस्जिद में बैठी हैं आपके साथ, नमाज़ पढ़ने आई हैं, आपका क्या फ़र्ज बनता है? आप जाकर बैठ गए, अभी अजान, अभी इकामत नहीं कही गई है, कहिए अस्सलामु अलैकुम, हम कहते हैं लो जिसको सलाम करेंगे और जिसको जानेंगे उसी को सलाम करेंगे, वरना लोग पूछते हैं हेलो आप कौन, मे आई नो यू। जी आप बता दें, जब आपसे कोई पूछे मे आई नो यू, कहें जी मेरा नाम ये है, मैंने मुसलमान होते हुए आपको सलाम किया है। और सलाम करना इंसान के किबर को तोड़ता है, सलाम को आम कीजिए। अब अपनी रूटीन बनाएं, अगर आप बाकी दिनों में मस्जिद जाएंगी या अल्लाह ताला अगर आपको ईद के दिन मस्जिद लेकर जाएगा, जिसका आमना सामना, जिससे नज़र टकरा जाए, सड़क पर नहीं बात कर रही मैं, मस्जिद में जिस ख़वातीन के पोर्शन में जिससे नज़र टकरा जाए, सर हिलाइए, करीब हैं तो सलाम का जवाब दीजिए। एक अच्छी तरह से सर हिलाना भी एक आपका अच्छा जेस्चर होता है, मुस्कुरा दीजिए दूर से देख कर। कभी कभी मुस्कुराना भी अच्छा होता है। मस्जिद में बास ख़वातीन आती हैं, लगता है उनके उनके ऊपर लिखा हुआ है मुस्कुराना मना है। क्यों, ये कौन सी इबादत हो, ये कौन सी स्पिरिचुअलिटी है? बास ख़वातीन चाहती हैं हमें कोई देखे भी नहीं मस्जिद में। भाई ठीक है, आप अपनी इबादत के लिए आए हैं, लेकिन थोड़ा, मस्जिद वो जगह है जहाँ आप कम्युनिटी में मूव कर रहे हैं। मस्जिद वो जगह है जहाँ पर आपको अपने मोहल्ले के वो लोग मिलते हैं जिनसे हमें ज़िंदगी में मिलने की तौफीक नहीं होती है, जो हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं। रिश्तेदारों से मिलते हैं हम तो साल साल पीछे, दो दो साल पीछे। आपका क्या ख्याल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तुम्हारा नेबरहुड तुम्हारे राइट हैंड पे 40 घर और तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर 40 घर, हम हर से जाके मिलते हैं ईद के ईद भी। तो मस्जिद वो जगह होती है, रमज़ान वो महीना होता है, इट्स अ ब्लेसिंग कि आप अगर मस्जिद जा रही हैं, आपको अपने मोहल्ले के चार चेहरे नज़र आते हैं, लोग नज़र आते हैं, सलाम दुआ कीजिए। बाज़ लोग इधर सलाम फेरते हैं ऐसे तीर की तरह बाहर निकलते हैं, जैसे पता नहीं कौन सी एलर्जी है उनको मस्जिद से। ये ना कीजिए, मिलें, इससे तकब्बुर टूटता है इंसान का। मस्जिद में आप जब खड़ी हैं, बाज़ों का ख़वातीन अपनी सफ़ इसलिए बदल लेती हैं, मेरे बराबर में जो खड़ी मैं इनके साथ खड़ी नहीं हो सकती, आई कॉन्ट स्टैंड विद हर। क्यों? इसलिए कि वो शायद स्टैंडर्ड में मेरे बराबर की नहीं लग रहे हैं। इंसान अपने दिल का हाल सबसे बेहतर जानता है, या अल्लाह जानता है मेरा दिल, या मैं खुद जानती हूँ अपने दिल को। जहन्नुम में जाने वालों का मेजर करेक्टरिस्टिक किबर होगा, तकब्बुर, बिल्कुल जैसे जन्नत में जाने वालों का मेजर करेक्टरिस्टिक खशियत होगा, खौफ होगा। जिस दिल में अल्लाह की खशियत होती है वो अल्लाह की मखलूक को मामूली नहीं समझता। जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो इंसान को डिग्रेडेड नहीं समझता। जिस दिल में अल्लाह का खौफ समा जाता है, अल्लाह की अजमत समा जाती है, वो इंसान किसी इंसान के गुनाह की वजह से भी उसको डिग्रेड नहीं करता। इसलिए कि इंसान मोमिन किसी भी इंसान के गुनाह से नफ़रत कर सकता है, उस इंसान से नफ़रत नहीं कर सकता। तो अगर हमने अपने आप को जहन्नुम से बचाना है, सबसे पहले इस किबर को अपने दिल से निकाल दें। बाज़ औक़ात हमें नहीं पता चलता, हमारे एटीट्यूड में एरोगेंस आ जाती है, तो उसमें बेहतर होता है आप अपने आसपास जो आपके करीबी लोग हैं, आपके अपने घर वाले, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके अम्मी अब्बू और आपका नौकर जो सारा दिन आपके साथ रहता है, ये सब लोग जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, आप टारगेट बना लें 6 महीने में वक्तन फवक्तन मैंने इनसे पूछते रहना है। सुनो, मैं एरोगेंट तो नहीं लगती, पूछने में बुराई है? कभी पूछे अपने बच्चों से, बच्चे और अम्मा ऐसा सवाल पूछें, अब अम्मा हाथ आई, खूब दिल भर के अम्मा को बुली करो। बच्चों जो हकीकत हो वही बताना, अगर आपको लगता है अम्मा में एरोगेंस है तो प्यार से कह देना, बहुत अदब के साथ, जी अम्मा कभी कभी लगता है। और अगर अम्मा में एरोगेंस नहीं है तो दिल खोल कर तारीफ करना कि नहीं अम्मा बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो इतनी सॉफ्ट स्पोकन है। हालांकि दिल कह रहा होगा जी नहीं, 24 घंटे मुझे डांटती रहती है। शौहर से पूछें क्या मैं आपको मुतकब्बिर लगती हूँ, कहेंगे बेगम तकवे का हैसा हो गया क्या, मुतकब्बिर लगती हूँ। लेकिन पूछा करें, कभी नौकर से पूछें, अब ये ड्राइवर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सही, या खानसामे से या चौकीदार से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जो आपका फ़ीमेल स्टाफ है, जो खातून है काम करने वाली, उनसे पूछें, देखो तुम्हें लगता तो नहीं कि मैं बता तकब्बुर वाली हो गई हूँ, ये पूछा करें। इसमें कोई किसी किस्म का जो है वो रिया नहीं आएगी, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो हमेशा हमें सच्ची गवाही देंगे, और हमें ऐसे लोगों की सच्ची गवाही चाहिए होती है। मुतकब्बिर इंसान के दोस्त कम से कम होते हैं, मुतकब्बिर इंसान के लोग जी हजूरी करने वाले बहुत हो सकते हैं। याद रखिएगा, मुतकब्बिर इंसान लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकता। मुतकब्बिर इंसान को लोग उसकी पोजीशन और उसके फेम की वजह से उसकी बटरिंग ज़रूर कर सकते हैं ताकि उनको भी 4 फायदे मिल जाएं, लेकिन जो दिल पर राज करता है, जो दिलों को फतह करता है, वो इंसान होता है जो जेन्युइन होता है, जिसकी मुस्कुराहट भी जेन्युइन होती है, जिसका कलाम भी जेन्युइन होता है, जिसका देखना भी जेन्युइन होता है। क्या किसी को किसने कैसे देखा, इससे पता चल जाता है कि वो मुतकब्बिर है कि नहीं। मिसाल के तौर पर आप मुझे देखकर मुस्कुराएं और मेरे माथे पे 3 बल स्टेबल रहें।